Okay, Bertie?
Yes.
Now what would I? So this is our last full talk.
तो ये हमारा आखिरी पूरा प्रवचन होगा.
And we have to gain enlightenment by the end of this talk.
और ये प्रवचन खत्म होते होते हमें बुद्धत्व प्राप्त करना है.
Otherwise you can claim your money back.
नहीं तो आप अपने पैसे वापस ले जा सकते हो.
So we've been looking at conditionality, of course.
तो हम संस्कारितता की ओर देख रहे थे.
And we've been looking at the different kinds of conditionality.
और अलग अलग तरह की संस्कारिता हमने देखी.
The five niyamas.
पांच नियम देखे.
And we've been looking especially at the two kinds of conditionality that affect our progress.
और हमारे विकास को जो दो संस्कारिता प्रभावित करती हैं, खासकर उनकी ओर हम देख रहे थे.
Well, we haven't really looked at the second one, but we've looked a bit at the first.
तो दूसरे की ओर नहीं देखा हमने, लेकिन पहली जो संस्कारिता है, उसको हमने देखा.
We've looked at karma niyama and I've mentioned dhamma niyama.
और कर्म नियम के बारे में हमने देखा और मैंने धम्म नियम का जिक्र किया था.
So today I want to say a little bit about dhamma niyama.
तो आज मैं धम्म नियम के बारे में कुछ कहूंगा.
I did say something last night, but I want to say a bit more today.
तो कल रात मैंने थोड़ा कहा था, लेकिन आज मैं और ज्यादा कुछ कहूंगा.
We've seen that karma niyama is the kind of conditionality that governs our self-consciousness.
तो हमने देखा कर्म नियम एक ऐसी संस्कारिता है कि जो हमारे स्व को नियंत्रित करती है.
Because we're self-conscious, we can make choices.
और क्योंकि हम स्व जागृत होते हैं, इसलिए हम चुनाव कर सकते हैं.
And of course, the choices we make affect the world around us.
और जो हम चुनाव करते हैं, उसका प्रभाव हमारे आसपास की दुनिया पर पड़ता है.
But they especially affect us.
लेकिन वो खासकर हमें भी प्रभावित करते
हैं. They affect the way in which our consciousness develops.
तो हमारी स्व जागृति किस तरीके से विकसित होती है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है.
So if we want to achieve a degree of excellence, we need to practice skillful karma.
तो अगर हमें उत्कृष्टता हासिल करना है, तो हमें कुशल कर्मों का आचरण करना पड़ेगा.
If we want to develop as individuals, we need to practice skillful karma.
अगर व्यक्ति के तौर पे हमें विकसित होना है, तो हमें कुशल कर्म करने पड़ेंगे.
If we want to simply avoid suffering, we need to practice skillful karma.
और अगर हमें दुख को भी दूर भगाना है, तो भी हमें कुशल कर्म का आचरण करना पड़ेगा.
And we looked at developing skillful karma in terms of practicing shila.
और कुशल कर्मों का आचरण हमने शीलाचरण के द्वारा देखा था.
And we looked at it in terms of developing meditation.
और हमने ध्यान को विकास करना इस तरीके से भी उसे देखा था.
Through meditation you're working directly on your mind.
और ध्यान में आप सीधे अपने मन पर कार्य करते हैं.
And we saw that there are indirect methods of working on your mind.
और हमने देखा कि बहुत ही अप्रत्यक्ष भी तरीके हैं अपने मन के ऊपर कार्य करने के.
So like being in nature and so on.
जैसे कि निसर्ग के साथ होना और बहुत कुछ.
Or even studying or listening to astrophysics.
या फिर एस्ट्रोफिजिक्स जो है, उसका अभ्यास करना या उसे सुनना.
Just getting some impression of the vastness and mystery of this universe.
तो ये जो दुनिया है, विश्व है, इसमें बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीजें हैं, उसे उसके द्वारा हम जानते हैं.
That can be a very imaginative and expansive experience.
बहुत ही काल्पनिक और बहुत ही अद्भुत ऐसे वहाँ अनुभव हो सकते हैं.
So all of these are ways in which we can bring about more positive, more elevated mental states.
तो ये सब तरीके हैं जिसमें से हम बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही ऊंची उठी ऐसी मानसिक अवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं.
And gradually, as we practice in this sort of way, our mind becomes more and more mature, you could say.
और जैसे जैसे इस तरह से हम आचरण करते हैं, एक प्रगल्भता हमारे मन को प्राप्त होती है.
It becomes more integrated.
और हम बहुत ज्यादा एकत्रित होते, एकात्म होते हैं.
It becomes more skillful, becomes more positive.
और जो भी कुशलता है, वो बहुत ही सकारात्मक तरीके से आती है.
Becomes more satisfied, more fulfilled.
और हमारे लिए बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही पूर्णत्व देने वाली होती है.
It has a stronger and stronger sense of interrelationship with the world around.
और हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है, उससे जो हमारा परस्पर संबंध है उसका एक अच्छा भावना हमें देती है.
Well, our mind becomes more subtle.
हमारा मन बहुत सूक्ष्म बनता है.
And we're able to see more and more clearly the way life really is.
और जीवन कैसा है उसको हम अधिक अधिक स्पष्ट तरीके से देखने लगते हैं.
And this process of refinement, of increasing positivity, takes us a very long way indeed.
और ये जो परिशुद्धता की प्रक्रिया है सकारात्मक दृष्टिकोण की, ये हमें बहुत दूर तक ले जाती
है. And we have a lot of work to do to bring this about.
और ये सब करने के लिए हमें बहुत कार्य करना पड़ता है.
But a point comes where we need to go beyond that.
लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमें इसके भी परे जाना होता है.
Because the karma niyama processes are all based on I.
क्योंकि कर्म नियम की जो भी प्रक्रिया है वो मैं या स्व पे आधारित होती है.
Although as you do become more and more skillful, I becomes less and less fixed.
लेकिन जैसे जैसे आप और ज्यादा ज्यादा कुशल बनते जाते हैं तो ये मैं जो है और ज्यादा ठोस बनते जाता है.
Our teacher Urgyen Sangharakshita passed on a teaching that he got from Ramana Maharshi, a Hindu guru from South India.
तो रमन महर्षि जो दक्षिण भारत के एक हिंदू गुरु थे उनसे प्राप्त हुई एक शिक्षा भंते संगरक्षित ने हमें दी.
He talked about ego as being raw or cooked. कच्चा और पक्का.
तो उन्होंने ऐसा कहा कि अहंकार जो होता है एक तरह से कच्चा होता है या पका हुआ होता है.
Before we can get rid of ego, we need to cook it.
तो जब हम अपने अहंकार को दूर भगा देते हैं लेकिन उससे पहले हमें उसे पकाना पड़ता है.
So कर्म is cooking the ego.
तो कर्म जो होता है अपने अहंकार को पकाने की प्रक्रिया है.
So it's not so harsh and hard, huh?
तो वो बहुत कठिन ऐसी नहीं है.
You know, if you eat brinjal when it's not cooked, it's really unpleasant.
तो अगर बैंगन है आपने उसको पकाया नहीं और वैसे ही कच्चा खाया तो बहुत कैसे तो भी लगेगा.
You know, sometimes you get a little piece of brinjal that hasn't been cooked properly.
तो जैसे आपको कभी एक बैंगन का टुकड़ा मिल जाता है जो ठीक से पका नहीं है.
It's completely uneatable.
और वो आप बिल्कुल नहीं खा सकते.
But when you cook it, it becomes more or less eatable.
लेकिन जब आप उसको पकाते हैं तो आप उसको खा सकते हैं.
I don't particularly like what is it, wangi.
तो मुझे वांगी मराठी में बैंगन उतने पसंद नहीं है.
I'm sorry to say it's not my favorite vegetable.
और मैं क्षमा चाहता हूँ वो मेरा कोई पसंदीदा सब्जी नहीं है.
I really like methi. I don't worry. I like Marathi food, but not wangi.
तो मुझे मराठी खाना पसंद है. मेथी तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन वांगी मुझे पसंद नहीं है.
But you know, if wangi is not cooked, it's terrible.
क्योंकि अगर बैंगन पके हुए नहीं है तो वो बहुत खतरनाक रहते हैं.
But when it's cooked, it becomes more or less eatable.
लेकिन जब वो पकाए जाते हैं तो आप उसको खा सकते हैं.
So our ego is like that.
वैसे ही हमारा अहंकार होता है.
It starts off as really bitter, hard, coarse.
तो वो बहुत ही कड़वा होता है, कठिन होता है, खुरदरा होता है.
Very unpleasant.
और बहुत ही बुरा होता है.
Actually quite painful.
और बहुत दुखद भी होता है.
But if you cook it with karma, it becomes softer, it becomes more pliable, becomes more pleasant.
लेकिन आप अगर आप उसको कर्म के साथ पकाते हैं तो वो नर्म होता है और फिर खाने लायक भी बनता है.
And without, I don't want to force the metaphor, but it begins to dissolve into what's around it.
तो मुझे नहीं पता किस तरीके से रखना है लेकिन आजू बाजू में जो कुछ भी है उसमें वो पिघलने लगता है.
We'll leave wangi behind and move on to another metaphor.
तो इसलिए हम ये बैंगन को बाजू में रखते हैं और दूसरा उदाहरण ढूंढते हैं.
But yes, as we practice skillful karma, the ego becomes more and more pliable, more and more plastic.
तो जैसे जैसे हम कर्म नियम लगाने लगते हैं तो हमारा अहंकार जो है वो नर्म होते जाता है.
Becomes able to experience what's really there.
और वो ये महसूस करने लगता है कि वास्तविकता क्या है.
More able to enter into friendship.
और वो मैत्री में अधिकाधिक प्रवेश करने लगता है.
More cooperative.
और सहकार करने लगता
And
है.
We experience very very subtle beautiful mental states.
और बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म सुंदर ऐसी मानसिक अवस्थाएं हम अनुभव करते हैं.
But ego is ego.
लेकिन अहंकार अहंकार है.
And we need to go beyond that.
और हमें उसके परे जाना है.
Because if you stop making a karmic effort, you go back down.
क्योंकि अगर आप कर्म के प्रयत्न करना रोक देते हैं तो वापस आप पीछे चले जाते हैं.
You get some experiences of this with meditation.
तो ध्यान में भी आपको ऐसे कुछ अनुभव आएंगे.
You can do the Maitri Vikas.
आप मैत्री विकास कर सकते हैं.
And you can feel really loving towards all beings.
और आपको ऐसे लगता है कि सभी सजीवों के लिए आपके पास प्यार है.
And then you come out of meditation.
और फिर आप ध्यान से बाहर आ जाते हैं.
You go outside.
आप बाहर जाते हैं.
And the puppy has stolen your shoes.
और वो कुत्ते का जो पिल्ला है उसने आपका जूता चुरा लिया.
And then you find yourself really annoyed.
और फिर आपको बहुत गुस्सा आता है.
This is what happened to me the other day.
ऐसा कल परसों मेरे साथ हुआ था.
And so all that maitri just gone, just like that.
और फिर वो जो सब मैत्री की थी वो एकदम ऐसे ही चली गई.
So with karma you can create a very positive state, but it can all dissolve again.
तो कर्म से आप बहुत ही विधायक ऐसी मनोवस्था निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो पिघल भी जा सकती है, चली जा सकती है.
Again, it's a bit like trying to get rid of weeds from a field.
तो ये इस तरीके से है जैसे वो फालतू का जो घास खेतों में रहती है उससे पीछा छुड़ाना.
Where I live in Wales, you get a particular weed called a thistle. Very spiky, very spiny.
तो जहाँ पे वेल्स में मैं रहता हूँ वहाँ के खेतों में ऐसी एक घास रहती है थिकल जिसको कहते हैं.
And it's the sheep can't eat it.
और ये ऐसी घास है जिसे भेड़े खा नहीं सकती.
So every year the farmer comes and he cuts it down.
तो हर साल फिर वो किसान आते हैं और उसको वो काटते हैं.
And you know, no thistles in the field.
और फिर वो कोई भी थिसल उस खेत में नहीं रहती.
But every year back they come.
लेकिन हर साल वो घास आ जाती है.
Because the roots are still in the ground.
क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो अभी भी जमीन में है.
So it's the same with karma.
तो ऐसा ही कर्मों के साथ भी होता है.
You can with skillful karma cut down, so to speak, that the negative states.
तो कुशल कर्मों के साथ ये नकारात्मक मनोस्थाएं जो है उसको आप काट सकते हो.
But as soon as you stop making an effort, back comes the negative states.
लेकिन जैसे ही आपके प्रयत्न बंद हो जाते हैं वो नकारात्मक भाव फिर उभर कर आते हैं.
Because their roots are still deep in the mind.
क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं अभी भी आपके मन की गहराइयों में हैं.
The roots deep in self-clinging, self-attachment.
तो उसकी जड़ें जो है खुद के प्रति जो आसक्ति है अपनी उसमें होती है.
So what we have to do is attack those roots directly.
तो हमें क्या करना होता है कि इन जड़ों के ऊपर सीधे प्रहार करना होता है.
Yes, we need to create this very open, very clear, very positive mental state.
तो बहुत ही खुला सा, बहुत ही स्पष्ट ऐसी मानसिक अवस्थाएं हमें निर्माण करनी होती है.
But then we use that to try to get to the bottom of things.
और फिर उसे इस्तेमाल करके चीजों की गहराइयों में जाने के लिए हमने उसका इस्तेमाल करना है.
We look at the real nature of this life.
तो इस जीवन का सच्चा स्वरूप क्या है उसकी ओर हमें देखना है.
We look at the fact that everything is really impermanent.
तो हम इस वास्तविकता को देखते हैं कि सब कुछ अनित्य है.
We try to realize that there is no fixed self.
तो हम इस बात का एहसास करते हैं कि कोई भी पक्का ऐसा स्व नहीं है.
When we try to realize that there's nothing in life, no combination of circumstances that can give us real permanent satisfaction.
और हम ये भी एहसास करते हैं कि ऐसी कोई परिस्थितियां एकत्र आके एक समूह बना के हमें पक्का संतोष नहीं दे सकती.
We reflect on what are known as the three lakshanas, the three marks of conditioned existence.
तो संस्कारित अस्तित्व के जो तीन लक्षण हैं, उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं.
Anicca, anatma, and dukkha.
तो दुख, अनित्यता और अनात्मा.
And we try to really see them.
और हम उन्हें सही में देखने की कोशिश करते हैं.
We need that basis in karmic development, otherwise we can't really see it.
और ये जो कर्मिक हमारा विकास है उसके आधार में हमें ये चाहिए, नहीं तो हम उसे नहीं देख सकते.
You know, we can say everything's impermanent.
हम कह सकते हैं कि सब कुछ अनित्य है.
And we can all recognize that's true.
और हम सब इसको महसूस कर सकते हैं कि ये सच है.
I'm sure nobody would really want to argue that there was anything that was permanent.
तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात पे वाद-विवाद करना चाहेगा कि कुछ तो ऐसा है जो पक्का है.
So we're convinced intellectually.
तो हम एक तरह से दिमाग हमारा उसको मान चुका है.
We're getting convinced intellectually.
तो दिमागी तौर पे हम उसको मान चुके हैं.
But we still behave as if things were permanent.
लेकिन हम फिर भी ऐसा बर्ताव करते हैं कि सब कुछ पक्का है.
We behave as if we are here forever.
हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम यहाँ पर हमेशा के लिए हैं.
We behave as if the banks can't go broke.
तो हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे बैंक जो है वो मतलब सब पैसे नहीं क्यों ताला नहीं लगेगा कभी बैंक्स पे.
We behave as if our loved ones belong to us.
हम ऐसा बर्ताव करते हैं कि हम जिनसे भी प्यार करते हैं वो हमारे ही हैं.
And that they're with us forever.
और वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे.
We behave as if we could create a set of conditions here in this life that would make us completely happy.
और हम ऐसा हम करते हैं कि हम परिस्थितियों का कुछ एक समूह बना लेते हैं कि और हमें लगता है कि ऐसी एकत्रित परिस्थितियां हमें संतोष दे सकती हैं.
Intellectually we know we can't.
तो दिमागी तौर पे हमें मालूम है कि हम ऐसा नहीं कर सकते.
But effectively we don't believe it.
लेकिन परिणाम कारक स्वरूप से हम उस पे विश्वास नहीं करते.
And the whole of our effort, our dhammic effort, is to convince ourselves fully and completely that this is the truth.
तो फिर पूरा हमारा धम्मिक जो प्रयास रहता है वो इस बात की ओर होता है कि हमें इस बात को पूरी तरह खुद को इस बात का पूरी तरह से विश्वास दिलाना.
What we need to do is to unify our minds and make our minds subtle so that they can really see.
तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे मन को पूरी तरह से एकाग्र करना सूक्ष्म करना ताकि वो इस चीज को देख सके.
It's a bit as if you want to hammer a nail into the wall.
तो जैसे एक खीला रहता है आप उसको दीवार में गाड़ना चाहते हैं.
And you try to use a feather to knock it in.
और आप किसी पक्षी का वो पंख लेते हैं और उससे आप उसको ठोकते हो.
It won't go in.
तो वो अंदर नहीं जाएगा.
You need a big hammer to drive it in.
तो क्योंकि आपको एक बड़ा सा हथौड़ा चाहिए उसे अंदर डालने के लिए.
So we need the full weight of our concentrated and elevated minds to drive prajna home.
तो हमें अपने ऊंचे ऐसे मन की और एकाग्र ऐसे मन की पूरी ताकत लगानी पड़ती है ताकि प्रज्ञा जो है वो अंदर आ सके.
Otherwise we can just say, oh, everything's impermanent.
नहीं तो हम सिर्फ ऊपरी तौर पे कह सकते हैं कि सब कुछ नित्य है.
कोई बात नहीं. Yeah, we know it's impermanent, but it doesn't make any difference.
तो हमें मालूम होता है कि वो अनित्य है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता.
We really need to see it.
हमें सही में उसे देखना पड़ता है.
Then we will stop clinging.
और then we will stop
clinging.
तब हम उससे फिर आसक्ति कम कर सकते हैं.
Then we will really let go.
और हम उसे छोड़ सकते हैं.
We'll stop clinging to I.
और खुद के स्व से हम चिपक के रहना छोड़ देंगे.
So in our dhamma practice, in our meditation practice, we begin to introduce reflection on the real nature of things.
और फिर हमारे धम्म आचरण में हमारे ध्यान के सराव में इस तरह का चिंतन जो है हम लेकर आते हैं.
So for instance we do the anapanasati.
जैसे हम अनापानसती करते हैं.
And once we become quite concentrated, we realize, we reflect on the impermanent character of the breath.
और फिर जब एक बार हम सही मायने में एकाग्र हो जाते हैं तब श्वास का जो अनियमितता है उसके ऊपर हम एकाग्र होते हैं.
In fact,
चिंतन करते हैं.
There's no such thing as breath.
तो श्वास ऐसी कोई चीज नहीं होती.
There's breathing, a constant process of breathing.
तो वहाँ पे श्वसन की एक निरंतर प्रक्रिया है.
And it's not actually our breathing.
और ये कोई हमारी श्वसन प्रक्रिया नहीं है.
It's just going on, it just happens.
ये सिर्फ होते रहती है, चलते रहती है.
Independent of our will, that breathing goes on.
और आपकी इच्छा हो या ना हो ये प्रक्रिया चलती रहती है.
It's not ours. Doesn't belong to us.
हमारी नहीं है, हमसे संबंधित नहीं.
So you reflect in this way.
इस तरह से आप चिंतन करते हैं.
And there are particular meditation practices that apply this kind of insight very directly.
और बहुत सारे ध्यान के ऐसे तरीके हैं जो इस तरीके के दृष्टिकोण के साथ सीधे कार्य करते हैं.
The one we mainly use in the Tri Ratna Buddhist community is reflecting on the six elements.
तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हम एक तरीका अपनाते हैं जहां पर हम छह धातुओं के ऊपर चिंतन करते हैं।
We reflect that there's earth in the body.
तो हम ये चिंतन करते हैं कि हमारे शरीर में पृथ्वी धातु है।
It's the same as the earth all around.
तो इर्द गिर्द जो भी पृथ्वी धातु है वैसे ही ये है।
In fact, it comes from the earth outside us.
और बाहर का जो पृथ्वी धातु है उसी में से ये धातु आता है।
We eat the earth element in the food that we take.
तो जो खाना हम खाते हैं उसमें से ये पृथ्वी धातु हम अंदर लेते हैं
And of course we give it back.
और हम उसे बाहर भी दे देते
We're
हैं
taking it and giving it back all the time.
तो हमेशा हम ये लेते रहते हैं और बाहर देते रहते हैं
our whole body is being constantly renewed.
और हमारा शरीर जो है हमेशा नया आकार लेते रहता है
We're taking from outside us, the body uses it for a while, then gives it back.
तो बाहर से हम चीजें लेते हैं कुछ समय के लिए हमारा शरीर उसका इस्तेमाल करता है और हम बाहर छोड़ देते हैं।
So there's nothing in the earth element that I can say that's me.
तो पृथ्वी धातु में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं कह सकता हूँ कि वो मैं हूँ।
There's nothing in the earth element that I can say this is mine.
तो पृथ्वी धातु में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा है।
I've just borrowed it and I give it back.
मैंने वो कुछ उधार लिया है और मैं लौटा देता हूँ।
Just to use that metaphor. Hmm?
तो सिर्फ ये उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल
And it's the same with the water element.
तो ऐसा ही जल धातु के बारे में है।
You drink it in, you give it back.
आप पी लेते हैं, आप बाहर छोड़ देते हैं।
The same with the fire element.
अग्नि के बारे में भी ऐसा है।
You know, there's temperature in the body.
आपको पता है आपके शरीर का तापमान होता है।
Yeah, just like the other two elements, you got it originally from your mother.
तो जैसे आपको मालूम है दो अन्य धातु के बाद जो आपको आपकी माँ से सीधे मिला
है। That temperature has to be sustained by the food you eat, by the heat of the sun, and so on.
तो आपके शरीर का जो भी तापमान है वो आपको वैसा ही रखना पड़ता है अन्न ग्रहण करके या तो सूरज की गर्मी से।
All the time you're radiating heat from your body.
हर समय आपके शरीर की ऊर्जा बाहर भी जा रही है।
So it's not yours, you're just borrowing it.
तो वो भी आपकी नहीं है, आप सिर्फ उधार ले रहे हो।
Same with the breath, with the air.
और वैसे ही हवा के साथ हैं, सांस के साथ हैं।
The whole body is just borrowed.
तो आपका पूरा शरीर जो है एक तरह से उधार लिया हुआ
है। It's not really me.
और वो आप सही मायने में मैं नहीं हूँ।
And in that sense, it's not really mine.
और इस तरीके से देखा जाए तो ये मेरा भी नहीं है।
It came into existence when I was conceived.
तो जब मेरी गर्भधारणा हुई थी तब ये अस्तित्व में आया।
And it goes when I'm put on the logs and burnt up.
और जब लकड़ियों के ऊपर मुझे लिटाया जाएगा और जलाया जाएगा तब ये चला जाएगा।
So this body is just it's just borrowed.
तो ये जो शरीर है ये उधार लिया हुआ है।
You know, I can use it to practice the Dhamma, to lead, to help other people.
तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ धम्म आचरण के लिए, दूसरे लोगों को मदद करने के लिए।
But it's not me, it doesn't define me.
लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी व्याख्या नहीं करता।
It's the same with the space that my body occupies.
और ये अवकाश भी जो मेरे शरीर ने पकड़ के रखा है उसके लिए भी ऐसा ही है।
We're very attached to space.
हम अपनी जगह से बहुत आसक्त होते हैं।
You know, my house.
मेरा घर।
मेरा गांव, my house, my village.
मेरा गांव।
My nation.
मेरा देश।
We're very attached to our particular portions of space.
तो जगह से संबंधित ये जो कुछ भी संकल्पनाएं रहती हैं हम उससे बहुत आसक्त रहते हैं।
We've even got a piece of paper to say we own this piece of space.
तो एक अपने पास कागज का टुकड़ा भी रहता है जिसमें हम लिखते हैं कि ये जगह हमारी है।
But when the body goes, the space goes.
लेकिन जब शरीर चला जाता है तो वो जगह भी चली जाती है।
Other people will live in your spaces.
और आपकी जो जो जगह है वहाँ पे दूसरे लोग रहना शुरू करेंगे।
So you're not defined by space.
तो आपकी व्याख्या जगह से या अवकाश से भी नहीं होती।
Now that you come onto consciousness.
और फिर आप चित्त की तरफ आते हैं।
This is more difficult to see.
तो इसे देखना थोड़ा सा मुश्किल है।
But we identify our consciousness as mine because it's connected with the body.
तो हमारे चित्त को या जागृति को भी ये मेरी है ऐसा हम देखते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती
But,
है।
Well, the body isn't mine.
लेकिन शरीर मेरा नहीं है।
So in that sense, there's nothing to own or identify consciousness.
तो फिर चित्त का संबंध जोड़ने के लिए ऐसी कोई भी चीज वहां नहीं है.
You can be conscious without thinking I.
तो आप जागरूक रह सकते हैं मैं के बारे में सोचे बिना.
You can just be conscious.
आप सिर्फ जागरूक रह सकते हैं.
You're just aware. There is just awareness.
तो आप इस बारे में जागरूक रह सकते हैं कि वहां पे सिर्फ जागरूकता है.
Without being identified with this part of experience. You can be just aware without being identified with this part of experience.
तो आप
नहीं. you can be aware. You can just be aware, but you don't have to think I.
तो आप सिर्फ जागरूक रह सकते हैं, लेकिन खुद मतलब मैं हूँ ऐसा सोचे बिना भी आप जागरूक रह सकते हैं.
We don't have to think this is mine.
तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा है.
We can be identified with the whole field of consciousness.
तो पूरा जो जागृति का क्षेत्र है उसके साथ हम अपनी पहचान बना सकते हैं.
We can be identified simply with consciousness itself.
तो हम सिर्फ जागृति के साथ भी अपनी पहचान बना सकते हैं.
Well, actually, we don't have to be identified at all.
तो हमारी पहचान बनाने की वैसे हमें आवश्यकता भी नहीं होती.
We're just aware.
हम सिर्फ जागरूक रह सकते हैं.
So when we reflect in this sort of way, we go very, very deeply into the structure of our experience.
तो जब हम इस तरीके से चिंतन करते हैं, तो हमारे अनुभव के बहुत तह तक हम पहुंचते हैं.
And we can have during that sort of meditation a strong sense of letting go.
और या फिर इस तरीके का जब हम ध्यान करते हैं, तो बहुत ही एक एहसास हमारे मन में आता है कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं.
You can see the body.
आप शरीर को देख सकते हो.
You're aware of the body.
आप शरीर के प्रति जागरूक हो.
But you feel quite detached from it.
लेकिन आप उससे अपने आप को अलग भी रख सकते हो.
You're just aware of it.
आप उसके प्रति जागरूक हो.
And of course you look after it in so far as that's useful.
और जितना उपयोगी है उसकी आप उतनी देखभाल भी कर सकते हो.
But you don't base your happiness on it.
लेकिन आप अपने सुख का उसे आधार नहीं बनाते.
There it is.
वो वहाँ है.
No attachment.
लेकिन उससे कोई आसक्ति नहीं है.
This was the Buddha's teaching to his own son.
तो ये जो है बुद्ध ने खुद अपने बेटे को सिखाया था.
His son Rahul became a bhikshu.
उनका जो बेटा था राहुल वो भिक्षु बना था.
And the Buddha gave him. He came to the Buddha asking for his inheritance.
तो वो बुद्ध के पास आया था और उनसे कह रहा था कि मेरी जो विरासत है मुझे दीजिए.
So the Buddha gave him his inheritance.
तो बुद्ध ने उसे उनकी विरासत दी.
Which was meditation on the non-selfhood of things.
और जो था कि स्वविरहित चीजों के ऊपर ध्यान करना.
He taught him to think, it is not me, not mine, not myself.
तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं.
मैं नहीं है.
मैं नहीं हूँ. मैं नहीं है, मेरा नहीं है और
मेरा स्व नहीं है.
और मेरा स्व भी नहीं है.
I've learned that because I lead this practice.
तो मैंने ये सीखा क्योंकि ये ध्यान का मैं नेतृत्व करता हूँ.
I have great trouble because my translators always say I am not myself.
और मुझे बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि मेरे अनुवादक जो है ऐसे कहते थे कि मैं खुद मैं नहीं हूँ.
But it's it is not myself. They मैं नहीं है.
तो वैसा नहीं है, ऐसा है कि मैं नहीं है.
So yes, we recognize that this is what the Buddha taught Rahul to reflect upon.
तो चिंतन करने के लिए ये एक बात बुद्ध ने राहुल को सिखाई थी.
And Rahul gained enlightenment as a result.
और उसके परिणाम स्वरूप राहुल को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था.
It was the Buddha's inheritance.
और वो बुद्ध की विरासत थी.
His legacy to his son.
तो उन्होंने अपनी जो विरासत अपने बेटे को दी थी.
He got something he didn't expect.
He got.
Rahul got something he didn't expect.
राहुल ने जिस चीज की कल्पना नहीं की थी ऐसी कुछ चीज राहुल को मिल गई थी.
So it's his legacy to us too.
तो ये हमें भी उनकी विरासत है.
We reflect on the fact that we don't need to think I.
तो हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि मैं इस बात पे सोचने की जरूरत नहीं है.
We can be fully alive, fully conscious without thinking I.
हम पूरी तरह से जी सकते हैं, पूरी तरह से जागरूक रह सकते हैं मैं के बारे में सोचे बिना.
It's very, very difficult to imagine what that might be.
तो ये बहुत ही मुश्किल है कल्पना करना कि ऐसा करना कैसा होगा.
But well, maybe we can have small experiences of it.
लेकिन हम उसके छोटे-छोटे अनुभव ले सकते हैं.
Sometimes in meditation you get that experience of just being free from self-attachment.
कभी-कभी ध्यान में आपको ऐसा अनुभव आता है कि आपकी खुद से आसक्ति से आप पूरी तरह से मुक्त हो.
Or in communication sometimes you can feel as if you're leaving behind the barrier between you and the other person.
और कभी-कभी संपर्क में आपको ऐसा लगता है कि दोनों को दोनों के बीच में एक जो रुकावट है इसी आप उसको पीछे छोड़ रहे हैं.
In aesthetic experience, sometimes you can feel as if you're just going beyond yourself.
और कभी-कभी ऐसे ही अनुभव में आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से परे जा रहे हो.
Or if you're just working to help others, you can feel as if you're leaving behind self.
और जब आप दूसरे को मदद करने के कुछ कार्य करते हो आपको ऐसा लगता है आप खुद के स्व को पीछे छोड़ रहे हो.
I've been talking quite a bit in India recently about an example that I've found in Sangharakshita's life.
तो संगरक्षित के जीवन में मुझे एक उदाहरण मिला था उसके बारे में मैं इन दिनों भारत में बहुत बात कर रहा हूँ.
It's quite well known that he happened to be in Nagpur on the 6th of December when the news of Baba Saheb's death came.
तो जैसे 6 दिसंबर को जब बाबा साहब की मृत्यु का संदेश आया था उस वक्त वो नागपुर में ही हुए थे.
And he found himself needing to rally people.
और उन्हें अंदर से ऐसा लग रहा था कि लोगों के का जो जमाव है उसको उन्होंने कुछ बताना चाहिए.
They'd been Buddhist for just 6 weeks.
क्योंकि सिर्फ 6 हफ्ते हुए थे उन्हें बौद्ध बने हुए.
And they were completely devastated by Baba Saheb's death.
और बाबा साहब की मृत्यु से वो पूरी तरह से टूट चुके थे.
And he found that he had to try to give people new heart.
लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोशिश करनी है और लोगों को एक नया जोश देने का प्रयास करना है.
And over the course of 3-4 days, he gave talks all over Nagpur.
और फिर आने वाले 3-4 दिनों में नागपुर में हर जगह उन्होंने प्रवचन दिए.
I think he gave more than 30 talks in 3 days.
और मुझे लगता है कि 3 दिनों में उन्होंने 30 से भी ज्यादा प्रवचन
दिए. He hardly slept because he was talking late at night as well.
और वो कभी कभार ही सोते थे क्योंकि रात को देर देर तक वो प्रवचन देते थे.
There's such a strong need that he just responded to it.
और वहाँ इतनी तीव्र ऐसी जरूरत थी कि उन्होंने उसे सिर्फ प्रतिसाद दिया.
And I've just recently seen a letter that he wrote to a friend on the 15th of December, just a week later.
और हाल ही में मैंने एक उनका पत्र पढ़ा जो उन्होंने 15 दिसंबर को अपने एक मित्र को लिखा था.
And he says that his experience at that time was very different.
और उसमें उन्होंने लिखा कि उस वक्त का उनका जो अनुभव है वो बहुत ही अलग था.
He said he experienced himself as an impersonal force.
तो उन्होंने ऐसा लिखा कि वो खुद को बहुत ही अलग ऐसे ताकत के रूप में देख रहे थे.
As if it wasn't him acting.
जैसे कुछ वहाँ पे वो खुद नहीं थे जो कि कार्यरत थे.
It wasn't anybody else.
और वहाँ कोई दूसरा भी तो नहीं था.
But there was no self there.
लेकिन वहाँ पे उनका कोई स्व नहीं था.
He said quite often he'd find himself speaking without any thought.
और कई बार वो कहते हैं कि वो अपने आप को बोलते हुए पाते थे और वो कुछ सोचते भी नहीं थे.
As if he was deep in meditation.
जैसे कुछ वो कोई बहुत गहरे ध्यान में है.
He would just speak.
वो सिर्फ बोलते थे.
He didn't in a way know what he was going to say.
और एक तरह से उन्हें पता भी नहीं होता था कि वो क्या कहने जा रहे हैं.
But what he said was what needed to be said.
लेकिन वो जो भी कहते थे उन्हीं शब्दों की जरूरत होती थी ऐसा उन्हें लगता.
And he said that at the end of that period he'd hardly slept.
और उस समय का के अंत तक उन्होंने कहा कि वो शायद ही कभी सोए थे.
But he felt completely fresh.
लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा तरोताजा महसूस होता था.
Completely rested.
और पूरी तरह से आराम दे उन्हें लगता
था. So to me this is a really good example of what that kind of selflessness means.
तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है ऐसे स्व से रिक्त होना इसका क्या मतलब है समझने के.
You continue to function.
आप कृति करते रहते हैं.
In fact, you function very, very efficiently, very effectively.
और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आप कृति करते हैं.
But there's no self.
लेकिन स्व नहीं रहता.
You're not doing it for you.
आप वो खुद के लिए नहीं कर रहे होते हैं.
There's a need. you just respond.
वहाँ पे जरूरत है और आप सिर्फ प्रतिसाद दे रहे हैं.
And it's completely spontaneous, completely unpremeditated.
और बहुत ही उस उत्स्फूर्तता से वो आती है बिना किसी ध्यान के द्वारा.
So to me, that's a very clear illustration of what we're talking about here.
और तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं इसका बहुत ही स्पष्ट ऐसा उदाहरण है.
I mentioned the other day my impression of Dr. Babasaheb Ambedkar.
तो कल मैंने बात की थी कि बाबा साहब अंबेडकर का मेरे मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा.
My impression is that a lot of the time he didn't do things for self.
तो मेरे ऊपर ऐसा उनका प्रभाव है कि बहुत बार वो खुद के लिए चीजें नहीं करते थे.
And it's particularly in the more not so much the political things, but the things he did for other people.
तो सिर्फ राजनीतिक बातें ही नहीं लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो उन्होंने दूसरे लोगों के लिए की.
There are many examples in Nanak Chand Ratu's memoirs.
तो नानक चंद रत्तू की जो पुस्तक है यादों के बारे में उसमें बहुत ऐसे उदाहरण है.
बाबा साहब जस्ट गोइंग कंप्लीटली आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प अ पुअर पर्सन.
तो जब कोई ऐसा गरीब व्यक्ति आता था तो बाबा साहब बहुत अपने रास्ते से अलग जाके भी उसे मदद करते थे.
And you get an impression of somebody who didn't think of himself.
और आपको फिर ऐसा एक व्यक्ति दिखना है जो कभी अपने बारे में नहीं सोचता था.
So this is what we're trying to achieve.
तो यही है जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
We're trying to develop through karma a mind that is capable of letting go of self.
तो हम कर्मों के द्वारा एक ऐसे मन की निर्मिति कर रहे हैं जो मन अपने स्व को छोड़ने में सक्षम है.
Then a new set of conditions open up.
और फिर नई परिस्थितियों का एक संच जो है वो खुला हो जाता है.
And these new set of conditions come under the heading of Dhamma Niyama.
और ये जो फिर नई परिस्थितियां हैं ये धम्म नियम के शीर्षक के अंतर्गत आती है.
There's no self, no will driving it.
तो कोई भी स्व या कोई भी इच्छा उसे नहीं चला रही है.
The states simply unfold from themselves.
तो ये जो स्थिति है अपने आप में से ही ऐसे खुलकर आती है.
One of these selfless states gives rise to another that is even more selfless.
तो एक स्वरहित स्थिति दूसरे स्वरहित स्थिति को जन्म देती है जो उससे भी अधिक बेहतर होती है.
They are not coming from anywhere else.
वो बाहर से कहीं से नहीं आती.
They don't come from above, they don't come from below.
तो वो ऊपर से नहीं आती नीचे से नहीं आती.
They arise from themselves, if you like.
तो वो अगर आपको ऐसा सोचना पसंद है तो वो खुद में से ही निर्मित होती है.
Just like a flower emerges from the seed.
तो ऐसे ही जैसे एक फूल बीज में से खिलता है.
They sprout and flower from within themselves.
तो बीज जो रहते हैं अपने अंदर से ही फूल का निर्माण करती है.
And it's this Dhamma Niyama conditioning that we're trying to open ourselves to.
और ये जो धम्म नियम की संस्कारिता है इसके प्रति हम अपने आप को खुला करने का प्रयास करें.
It's a kind of conditioning that's implicit in consciousness itself.
तो ये एक ऐसी संस्कारिता है जो खुद ही जागृति के बारे में बयान करती है.
You could say that consciousness has a natural tendency to unfold.
आप ऐसा कह सकते हैं कि जागृति का खुद ही ये स्वाभाविक स्वभाव होता है कि वो खुलना चाहती है.
But usually we're holding it in.
लेकिन हम उसे जकड़ कर रखते हैं.
Because we don't understand the nature of our experience, we try to fix our experience.
क्योंकि हम अपने अनुभव के स्वभाव को नहीं जानते इसलिए हम अपने अनुभव को जकड़ कर रखना चाहते हैं.
And we manage to sort of hold it in.
और हम इसमें सफल भी हो जाते हैं कि उसे जकड़ के रखा जाए.
But that holding in produces pain.
लेकिन इस तरह से फिर जकड़ के रखने के वजह से दुख निर्माण होता
है. It creates unskillfulness.
और फिर उससे अकुशलता का निर्माण होता है.
It creates pain to others.
और उससे दूसरों के लिए भी दुख निर्माण होता है.
But our consciousness has implicit within it an expansion.
लेकिन हमारी जागृति के भीतर ही एक स्वभाव होता है विस्तार करने का.
With karma, we're allowing that expansion to take place.
और कर्म के साथ इस तरीके का विस्तार जो है उसे हम होने देते हैं.
When we break through self, that expansion takes place quite naturally.
और जब हम इस स्व को तोड़ के आगे निकलते हैं तो ये विस्तार अपने आप होता है.
And we experience that expansion even now.
और इस तरीका का ये जो विस्तार है इसका हम अभी भी अनुभव लेते हैं.
You experience a sort of pressure to be more.
Pressure?
A pressure to be more.
Moved.
To be more than you are.
हाँ. तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके ऊपर जो भी दबाव है वो आपसे बहुत ज्यादा है.
There's something in you that wants to grow.
और आपके अंदर ऐसा कुछ है जो बढ़ना चाहता है.
Growth for a human being is natural.
और मनुष्य के लिए बढ़ना ये बहुत स्वाभाविक है.
Actually, you could say it of everything.
और ये आप हर चीज के बारे में बोल सकते हैं.
You could say that this is a sort of evolutionary force that's implicit in everything.
तो आप कह सकते हो ये एक तरह से उत्क्रांति की एक ताकत है जो अपने आप को ला रही है आगे.
But it's the sort of pressure that you feel at times in the middle of the night when you wake up.
लेकिन ये एक ऐसी ताकत है वो अचानक आधी रात को भी आप उसको महसूस करते हो और उठ के बैठते.
It's a feeling that there should be more to life than this.
और आपके अंदर ऐसी एक भावना आती है कि जीवन में इससे भी ज्यादा और कुछ चाहिए.
Not just for you, but for others too.
और सिर्फ आपके लिए ही नहीं तो सबके लिए, दूसरों के लिए.
You see the life that people live, and you know there must be better, there must be more.
और आप देखते हो कि दूसरे लोग कैसा जीवन जी रहे हैं और आपको लगता है कि और बेहतर जीवन होना चाहिए.
You feel yourself that you're capable of more. You should have more.
आपको ऐसे लगता है कि इससे अधिक की क्षमता आपके अंदर है और आपको और अधिक चाहिए.
But that's at war with our self-clinging.
और ये एक तरह का संघर्ष रहता है जो कि मैं के साथ जुड़ा हुआ था.
And our karmic effort is trying to go beyond that self-clinging.
और इस प्रकार की आसक्ति से परे जाने के लिए कर्मिक प्रयास जो है हमें मदद करते हैं.
When we break through self, that process happens spontaneously.
और फिर जब हम इस स्व को तोड़ के आगे जाते हैं तो ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है.
So this inner pressure is there all the time.
तो इस तरीके का एक दबाव आपके अंदर हमेशा होता है.
It's something that's trying to take us beyond ourselves.
कुछ तो होता है जो हमें हमसे परे ले जाने के लिए कार्यरत रहता है.
And the most important thing for us is to rejoice at that.
और हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसमें आनंद लें.
To build our lives on that expansion within us.
और हमारे अंदर ये जो विस्तारितता है उसके ऊपर हम हमारा जीवन का आधार रखें.
So much of life tries to hold things down.
और बहुत सारा जीवन ऐसा रहता है कि जो चीजों को दबा के रखना चाहते
हैं. It tries to restrict human expansion.
और मनुष्य की इस विस्तारिकता को वो एक तरह से रोक देना चाहती है.
So much of convention really is simply wanting things to remain the same.
और बहुत सारी परंपरागत चीजें ऐसी है जो चीजों को जैसा है वैसा ही रखना चाहती है.
But to be a human being is to have an infinite potential.
लेकिन एक मनुष्य होने का मतलब होता है कि आपके पास अमर्याद क्षमता है.
It's that jewel inside the lotus.
ये आपके कमल के अंदर का एक रत्न है.
And we feel that.
और हम उसे महसूस करते
That's
हैं.
Why we can respond to the Buddha.
और इसीलिए हम बुद्ध को प्रतिसाद दे पाते
Because
हैं.
The Buddha represents that expansive momentum without any check. Without anything to hold it back.
क्योंकि बुद्ध जो है इस ताकत का विस्तारित स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं कुछ भी जकड़ कर रखे बिना.
He's pure expansion.
वो एक परिशुद्ध विस्तारित अवस्था है.
There's no restrictions upon his mind.
और उनके मन को किसी भी चीज ने जकड़ कर नहीं रखा हुआ है.
And we can respond to him.
और हम उन्हें प्रतिसाद देते
हैं. When we see the Buddha, there's something in us that responds to what's in him.
तो जब हम बुद्ध को देखते हैं तो हमारे भीतर ऐसा कुछ होता है जो उसे प्रतिसाद देता है.
It's as if what the Buddha is, we know we can be.
ऐसा होता है जैसे जो कुछ भी बुद्ध है हमें पता होता है कि हम भी बन सकते हैं.
And our Dhamma life is trying to live out that expansive momentum.
और हमारा जीवन जो है वो विस्तारित जो ताकत है उसको जीने का प्रयास है.
First of all, we practice skillful action.
सबसे पहले हम कुशल कृति का आचरण करते हैं.
And that enables us to develop in line with that expansive momentum.
और फिर इसकी वजह से वो जो एक ताकत है उसकी दिशा में हम विस्तारित होना हमारे लिए
very difficult.
Not difficult. I'm not finding the word. शक्य होतं मराठी मध्ये मुमकिन हो जाता है
it's very difficult this yes so that you're through skillful karma you're deliberately going with that expansive force
तो आपके कुशल कर्मों के साथ की वजह से आप जानबूझकर उस ताकत के दिशा में बढ़ते हैं आगे
and you're going with it to the point at which you can see there's nothing to hold it back
और फिर आप एक ऐसे बिंदु तक उसके साथ सफर करते हैं जहां आप देख पाते हो कि अभी आपको पीछे लाने के लिए कुछ नहीं है
and then you just relax
और फिर आप बहुत शांत हो जाते हो
you just go with it
और आप सिर्फ उसके साथ चले जाते हो
it's of course spoken of as stream entry
और इसी को हम स्रोतापन्न अवस्था कहते हैं
does that make sense in Hindi श्रोतापन्न yeah entering the stream
हाँ मतलब एक प्रवाह है धम्म का उसमें हमने प्रवेश किया है और उससे हम अभी बाहर नहीं आ सकते
so that you enter the Dhamma Shrota the stream of the Dhamma
तो धम्म का एक प्रवाह है उसमें आप प्रवेश करते हो
we're a bit like people who are standing at the side of a river
तो हम ऐसा है कि एक नदी है और उसके किनारे पे हम खड़े हुए हैं
we got our foot one foot just a little bit into the river
तो एक हमारा पैर है और थोड़ा सा ही हम उस नदी में डुबोते हैं
and we can feel a little bit of the pull of the river
और फिर वो जो पानी का प्रवाह है उसको हम थोड़ा सा महसूस करते हैं
but we're still firmly on the bank
लेकिन अभी भी हम किनारे पे ही खड़े हुए हैं
and the water well it frightens us
और पानी जो है उससे हमें डर लगता है
because it threatens to carry us away
क्योंकि हमें डर लगता है कि वो हमें अपने साथ बहा ले जाएगा
so we try and put our foot back on the land
और इसलिए हम अपना पैर खींच के वापस जमीन पर ले आते हैं
we can't help put our finger foot back into the river
और वापस फिर हम अपना पैर जो है पानी में लेकर जाते हैं
we feel that pull
और फिर वापस हम वो बहाव को महसूस करते हैं
that pull is deeply attractive but also very frightening
तो उस पानी से हम बहुत आकर्षित भी होते हैं लेकिन उतना ही हमें डर भी लगता है
so eventually we commit ourselves to dhamma practice
लेकिन अंत में हम धम्म आचरण के लिए अपने आप को समर्पित कर देते
हैं we have to with great effort push ourselves into the stream
और बहुत प्रयासों से फिर हमें अपने आप को उस पानी में लाना पड़ता है
we have to move through all the mud all the water hyacinth all the muck
तो जो भी वहां पे अंदर गड्ढे हैं मिट्टी है उसमें से बचते बचाते हम उसमें जाते हैं
I had a look in the Mulamutta the other day and oh it's so dirty
वो मुलामुठा नदी जो है मैंने उस दिन देखी बहुत गंदी है
so many plastic bottles and so forth
और बहुत सारी प्लास्टिक की वहां बोतलें पड़ी हैं
we have to push our way through the plastic bottles
और वो प्लास्टिक बोतल के बीच में से हमें अपना रास्ता ढूंढना पड़ रहा था
when you get into the middle of the river
और लेकिन जब आप उस नदी के बीच पहुंचते हो
then the pull of the river takes you
फिर वो जो पानी का बहाव होता है वो आपको अपने साथ ले जाता है
you don't have to make any effort
फिर आपको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते
you just lie back and the river carries you away
आप सिर्फ लेट जाते हो और नदी जो है वो आपको बहाकर ले जाती है
it just carries you to the ocean
और वो नदी आपको समुद्र तक ले जाती है
carries you if you like to Buddhahood
और अगर आप चाहो तो वो आपको बुद्धत्व तक भी ले जाती
so, है karma is that process of getting into the stream.
तो कर्म जो है उस नदी के प्रवाह तक जाने की प्रक्रिया है
Dhamma is that stream.
धम्म जो है वो प्रवाह है
again it's a bit like sailing in a sailing boat
तो जैसे वो सेल बोट होती है ना पतवार वाली नाव उसमें बैठकर जाने जैसा
है I told you the other day my father was a naval officer
तो उस दिन मैंने आपको बताया कि मेरे पिता नौसेना में थे
and well he used to take us sailing a lot
और वो हमें फिर सेलिंग के लिए बहुत बार लेकर जाते हैं
and when you go sailing of course you have to catch the wind
और जब वो आप वो पतवार वाली नाव में जाते हो तो हवा किस दिशा में बह रही है आपको देखना पड़ता
है when you start on the shore you start on the dock side
तो आप किनारे से शुरुआत करते हो डॉक से शुरुआत करते हो
and there's no wind
और वहां हवा नहीं होती
so you have to get out the oars and row
तो फिर वो जो पतवार रहती है वो जो चलाने वाले डंडे रहते हैं उसको लेके आप अंदर जाते हो
I don't think you've ever done it before
ऐसे ऐसे
obviously in Nashik they do a lot of rowing So you have to row out into the bay.
तो फिर वो नाव चला के आपको बीच में जाना पड़ता है.
And you can hoist your sail.
और फिर आप अपनी पतवार चढ़ाते हो.
And then you just sit back and the wind carries you along.
और फिर आप आराम से बैठ जाते हो और हवा जो है वही आपको ले जाती है.
So our dhamma life first of all requires us to make a lot of effort.
तो हमारा धम्म जीवन में सबसे पहले हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं.
We have to make an effort to overcome the resistance of self-clinging.
तो स्व के प्रति जो आसक्ति होती है उसको दूर हटाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं.
We can feel the pull.
हम वो प्रवाह जो है वो महसूस कर सकते हैं.
That's why we're presumably all here.
और शायद इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं.
We feel the call to be something more than we are.
We feel
the... With the call that the
तो कोई चीज है जो हमें बुला रही है, आकर्षित कर रही है और हमें ऐसा लगता है कि और भी कुछ है जानने के.
There's something in us that pulls us forward.
हमारे अंदर ऐसा कुछ होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए बोलता है.
But we stop it.
लेकिन हम अपने आप को रोकते रहते हैं.
We check it.
हम उसे रोकते हैं.
We make this excuse to ourselves, that excuse to ourselves.
हम ये कारण देते हैं, हम वो कारण देते हैं.
There's this problem, that problem.
ये समस्या है, वो समस्या है.
The truth is, we're frightened.
लेकिन सच्चाई ये है कि हम डरे हुए होते हैं.
Because if we go forward, we have to let go of ourselves.
क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे स्व को हमें छोड़ना पड़ता है.
And we fear that letting go of ourselves means nothing.
और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरीके से स्व को छोड़ दें, तो कुछ नहीं बचेगा.
Like the lights going out.
तो ऐसा रहेगा जैसे सब प्रकाश गायब हो गया है.
But that's not the way it is.
लेकिन ऐसा नहीं होता है.
The Buddha is living proof of that.
और बुद्ध इसके जीवंत उदाहरण है.
Even though he'd got free from self, he was a living, breathing being.
भले वो अपने स्व से मुक्त हो चुके थे, वो जीवंत थे, श्वास लेते थे.
And completely free from mental suffering.
और मानसिक जो भी दुख है, उन सब से वो मुक्त थे.
Experiencing nothing but happiness and joy.
और सिर्फ सुख और आनंद ही वो महसूस करते
थे. The great bliss of freedom.
और मुक्ति का जो है अपूर्व ऐसा वो आनंद लेते थे.
So if we can let go of this self-clinging, this self-identification, we're free.
तो स्व आसक्ति या स्व की पहचान को अगर हम छोड़ पाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं.
We find it difficult to believe that.
लेकिन इस पे विश्वास करना हमें बहुत कठिन लगता है.
Perhaps it's part of our evolutionary legacy.
शायद ये हमारी उत्क्रांति का जो इतिहास है उसमें से भी आया हो.
You know, an animal is programmed to defend itself.
क्योंकि एक प्राणी जो रहता है उसके एक प्रकार से प्रोग्राम रहता है कि वो उसे अपने आप हमेशा बचाव करना है.
So that sort of instinct to remain I is very strong in us.
तो इसलिए ये कि मैं बना रहना ये बहुत ही हमारे अंदर सशक्त ऐसी अंतःप्रेरणा होती है.
We have to work against it through karma, skillful karma.
और कुशल कर्मों के द्वारा हमें इसके विपरीत प्रयास करने पड़ते हैं.
And then we're free.
और फिर हम मुक्त हो जाते हैं.
And we naturally progress towards enlightenment.
और फिर बुद्धत्व के द्वारा हम की तरफ हमारा स्वाभाविक विकास होता है.
And all our actions are increasingly motivated by spontaneous compassion.
और हमारी सारी जो कृतियां रहती है उसका एक स्वाभाविक करुणा जो है वो उसकी प्रेरणा बनती है.
So we've arrived at a point where we have a new notion of excellence.
तो हम इस जगह पहुंचे हैं कि जहां पे अभी उत्कृष्टता का हमारा नया दृष्टिकोण है.
We have an English expression which is that he excelled himself.
तो हमारे पास एक अंग्रेजी वाक्य है कि वो खुद से बेहतर बना.
And it's literally true.
और ये सही भी है.
You excel yourself.
आप खुद से ज्यादा बेहतर बनते.
The Buddha has excelled self.
बुद्ध जो है वो खुद से ज्यादा बेहतर बने.
That's what excellence ultimately means.
और उत्कृष्टता का अंत में यही अर्थ है.
So it's quite a very very lofty point that we've arrived at.
तो ये बहुत ही ऊंचा ऐसा बिंदु है जहां पर हम अभी आए हैं.
Our work is very much on skillful action right now.
तो हमारा जो अधिकतर कार्य है वो अभी करने वाले कुशल कार्यों पर है.
And that's very, very hard. We know that.
और हमें पता है कि ये बहुत बहुत कठिन है.
But it's always important to keep some connection with what goes beyond self.
लेकिन इस बात के साथ संबंध रखना कि इसके परे क्या है बहुत जरूरी है.
It's very important to keep a connection with the Buddha.
बुद्ध के साथ संपर्क बनाए रहना बहुत जरूरी है.
So you have an imaginative connection with him.
और उनके साथ आपका एक काल्पनिक संबंध होता है.
But that's why we always have the Buddha represented in our shrine rooms.
और इसीलिए हमेशा हमारे पूजा स्थान में हम बुद्ध को रखते हैं.
So that you have a strong sense of somebody who's gone beyond self.
ताकि आप हमेशा इस बात को महसूस कर सको कि वहाँ कोई है जो परे चला गया.
In a way, you're reminding yourself, don't worry, it's okay to let go of self.
तो एक तरह से आप अपने आप को याद दिलाते हो कि कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है अपने स्व को छोड़ने में.
This is what you become.
क्योंकि ऐसा करने से ये आप बनोगे.
It's very good also to visit, for instance, Bodh Gaya.
तो बोध गया जाना बहुत अच्छी बात है.
You're really lucky as Indians that you can just take a train there.
क्योंकि आप भारतीय हो, आपके लिए बहुत आसान है, आपने ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँचे.
I try to visit every year.
मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ मैं हर साल जाऊँ.
So much about Bodh Gaya is horrible.
बोध गया का बहुत कुछ जो है वो बहुत भयानक है.
It's the worst sort of Indian tourist place in many ways.
तो भारत का बहुत ही बुरा ऐसा प्रेक्षणीय स्थल है वो.
But under the Bodhi tree is the most wonderful place in the world.
लेकिन बोधि वृक्ष के जो नीचे जगह है वो दुनिया की सबसे अच्छी जगह है.
Because it puts you directly in imaginative contact with what happened there.
क्योंकि वहां जब आप पहुंचते हो एक प्रकार से सीधा आपका काल्पनिक संबंध बन जाता है कि वहां क्या हुआ था इसके साथ.
I'll be going there in 3 weeks time myself.
तो 3 हफ्तों में मैं वहां जाने वाला हूं.
And you get a very strong sense that it really did happen.
और आपको बहुत ही गहराई से महसूस होता है कि यहां सच में वो हुआ था.
It's not just about plaster or stone.
तो कोई प्लास्टर से बनी हुई या पत्थर से बनी हुई चीज के बारे में ये नहीं है.
It's about real flesh and blood.
तो हार्ड मास के किसी के बारे में वो है.
And you can go here to the places that the Buddha visited.
और फिर बुद्ध जिन जिन जगह गए वहां पर आप जा सकते हो.
I found the place in Delhi where the Buddha preached the Satipatthana Sutta.
दिल्ली में मैं ऐसी जगह गया जहाँ पे बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र का उपदेश दिया था.
Completely neglected park near the Lotus Temple.
तो वो जो लोटस टेम्पल है उसके पास में ये है और पूरी तरह से दुर्लक्षित उपेक्षित ऐसी वो जगह है. वहाँ पे यहाँ क्या हुआ था ये बताने वाली कोई चीज नहीं है.
जस्ट एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यू नो, स्टैंडर्ड नोटिस.
तो पुरातत्व विभाग का सिर्फ एक वहाँ पे नोटिस है.
But there's a rock outcrop in the middle of this park.
और उस पार्क के बीचों बीच में एक पत्थर का ऐसा ये है.
And on the top of this there's an inscription in Brahmini, in Ashokan script, saying this is where the Buddha preached the Satipatthana Sutta.
और उस टीले के ऊपर जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि ये वो जगह है जहाँ बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र का उपदेश दिया है.
So you can be somewhere where the Buddha gave this very, very deep teaching.
और आप ऐसी जगह पे जा सकते हो कि बुद्ध ने बहुत अपनी गहरी गहरी शिक्षाएं वहां पे दी हैं.
So the more you can connect with the Buddha imaginatively, the easier it will be to go beyond yourself.
और जितना काल्पनिक स्तर पे आप बुद्ध के साथ जुड़ सकते हो उतना आपके लिए परे जाना सहज होता जाएगा.
So if you want to achieve excellence, keep the Buddha before you.
और अगर आप उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं तो बुद्ध को आपके सामने रखिए.
Keep other great figures before you.
और अन्य ऐसे महान जो व्यक्तिमत्व है उनको आपके सामने रखिए.
Well, we have Baba Sahib and Urgyen Sangharakshita.
हमारे सामने बाबा साहब हैं, उर्गेन संगरक्षित हैं.
And in our belief and experience, they are people who did go beyond self.
और हमारे अनुभव में वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्व के आगे निकल कर गए.
I can't tell how much.
मैं ये नहीं कह सकता कि कितना आगे.
But certainly much more than I do.
लेकिन मैं जितना आगे गया हूँ उससे तो बहुत ज्यादा वो आगे.
So if we keep in touch with that dimension, it helps us to make the immediate effort here and now.
तो इस दृष्टिकोण के अगर हम संपर्क में रहते हैं तो फिर अभी प्रयास करने की हमें प्रेरणा मिलती है.
We need to get on with skillful action.
और कुशल कर्मों से हमें इसकी शुरुआत करनी है.
We need to get on with practicing the precepts.
और शीलों के आचरण से हमें शुरुआत करनी
है. We need to get on with developing indirect methods of developing the mind.
तो मन को विकसित करने के अप्रत्यक्ष तरीके हैं उससे हमें शुरुआत करनी है
and then we need to get on with direct methods in other words with meditation
और ध्यान जैसे प्रत्यक्ष तरीके हैं उनसे हमें शुरुआत करनी है
and if we do that we will naturally progress
और अगर हम ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक ही हमारी प्रगति होगी
when you drop a stone it falls to the ground
तो जब आप किसी पत्थर को छोड़ते हो वो जमीन पे गिरता है
because of the regularity of gravity
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का हमेशा होने वाला वहां पे ताकत है
if you make a skillful effort your mind will develop
अगर आप कुशल कर्म करते हैं तो आपका मन विकसित होता है
because of the principle of karma
क्योंकि उसके पीछे कर्म का नियम है
it's built into the way things are
और चीजें ऐसी होती हैं ये इसी पर आधारित है
which is just a way of saying it is the way things are
तो ये कहने का तरीका है कि चीजें ऐसी ही होती हैं
nobody built it in it just is like that
किसी ने इन्हें बनाया नहीं है वो ऐसी ही हैं
so we need to get on with the day by day business of karma
तो कर्म का अपने दैनंदिन जीवन में जो भी कार्य होता है उससे हमें शुरुआत करनी है
And it's guaranteed that development will take place.
और इस बात का पूरा भरोसा दिलाया जा सकता है कि विकास होगा
Yes, money back guarantee.
और पैसे वापस वाली गारंटी
as they say on the advertising.
तो जैसे वो विज्ञापनों में कहते हैं
skillful action every day will develop your mind.
तो जैसे आप रोज अगर कोई कुशल कर्म करते हो तो आपके मन का विकास होगा
Money back guarantee.
और पैसा नहीं तो पैसा वापस
Don't come looking for me.
लेकिन मुझे ढूंढते हुए मत आना
But yes, it will work because like any other if you like scientific law it's part of the way things are
तो अन्य किसी भी वैज्ञानिक नियम के जैसा यह भी कार्य करेगा क्योंकि ये जीवन का लॉ है
and look within you for that pull of the dhamma niyama
और अपने अंदर जो ये खिंचाव है धम्म नियम के लिए इसको आप देखते रहिए
look at that something in you that wants to be more
और अपने अंदर वो जो कुछ है जो और कुछ बनना चाहता है उसे ढूंढते रहिए
one of the things that's really important is to have spiritual friends
तो एक बहुत जरूरी चीज है कि आध्यात्मिक मित्र होना
because if you talk to many people about this they'll suggest you go and see a psychiatrist
तो अगर अन्य लोगों के साथ आप इस बारे में बात करते हो तो वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आप मनोवैज्ञानिक के बाद साइकेट्रिस्ट के पास जाइए
They'll say there's a pill for that, don't worry.
तो और वो आपको बताएंगे कि इसके लिए गोली है चिंता मत कीजिए
Or they'll say, have another drink.
या वो कहेंगे कि और एक शराब का ग्लास पी लीजिए
Or buy a bigger television.
कहेंगे कि आप और थोड़ा सा बड़ा टीवी खरीद लीजिए
That's what most people think.
और ऐसे ही दूसरे लोग सोचते हैं
If they feel that sort of pull to something more, they satisfy it in a worldly way.
तो अगर उनके अंदर ऐसा कुछ एक खिंचाव होता है और कुछ चाहिए इसके लिए तो वो दुनिया की चीजों से उसे भरने की कोशिश करते
हैं It's really important to have friends who value your dissatisfaction.
तो आपको ऐसे मित्र होना बहुत जरूरी है कि जो आपके अंदर ये असंतोष है उसकी कद्र करते हैं
Value, in other words, your dissatisfaction with ego clinging
तो आपका जो ये स्व के साथ जो लगाव है उसकी वो कद्र करते हैं लगाव को छोड़ने का जो है उसके साथ कद्र
so value that sense within you that there's more
तो आपके अंदर ये जो भावना है कि और बहुत कुछ है इसकी वो कद्र करते हैं
that sense within you that you could live a better life
तो अंदर की आपकी भावना कि आप और अच्छा जीवन जी सकते हैं
that is live a better life from inside not you know move to a different part of pune
to acha jeevan is tarike se andar se acha jeevan ji rahe ye nahi ki aap pune ke aur kisi jagah pe ja kar rehna shuru kar rahe
and if you obey that pull well you'll experience yourself developing
aur agar aap us khichav ke anusar karya karte hain to aap dekhenge ki aapka vikas ho raha hai
so I think we've had a very good look at excellence
तो मुझे लगता है कि उत्कृष्टता की तरफ हमने बहुत अच्छे से देखा
Enough of words.
शब्द भी बहुत हो गए
Time for action.
अभी कृति का समय है
And the action is with each of us.
और कृति जो है हमने खुद के साथ करनी है.
Nobody else is going to do it.
दूसरा कोई करने वाला नहीं है.
You can't pay somebody to meditate for you.
आप किसी को पैसे देकर नहीं बोल सकते कि मेरे लिए ध्यान करो.
This is what happens in some parts of the Buddhist world.
तो कुछ बौद्ध जगत में ऐसा होता है.
You pay the monks to meditate.
आप जो भिक्षुओं को पैसा देते और बोलते हो ध्यान करो.
I'm sorry, that won't work.
मुझे खेद है कि उससे कुछ फायदा नहीं होगा.
Anyway, don't believe they do meditate.
और आप इस बात पे विश्वास भी मत करो कि वो ध्यान करते होंगे.
They're too busy getting a bigger TV.
उनको बहुत व्यस्त होते हैं कि कैसे बड़ा टीवी लाया जाए.
But yes, now it's up to each of us to try to work all this out in the midst of our ordinary lives.
लेकिन अभी ये हम सबके ऊपर है कि अपने दैनंदिन व्यस्त जीवन में हम किस तरीके से कार्य करेंगे.
So I'll hand you over now to Jivak.
तो अब मैं आप सबको जीवक के हाथ में देता हूँ.
Oh, I'm handing you over to Anoma Dasi. Okay, I'm handing you over to a break. Well, if I know anything of India, a 10-minute break means a 30-minute break.
तो मुझे भारत के बारे में कुछ भी पता है तो 10 मिनट की छुट्टी का मतलब होता है 30 मिनट की छुट्टी.
So let's have a 0-minute break.
तो इसलिए शून्य मिनट का ब्रेक.
And we'll come back, and I don't know what Anoma Dasi is going to do with us.
तो हम वापस आएंगे और मुझे पता नहीं कि हमारे साथ अनोम दासी क्या करेंगे.
But thank you very much indeed for putting up with words, words, words.
लेकिन शब्द, शब्द, शब्दों को बर्दाश्त करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.
And of course, thank you so much to Bharti.
और भारती का भी बहुत-बहुत धन्यवाद.
I kept on forgetting that I had to. Use words that were easy to translate.
मैं ये हमेशा भूल जाता था कि मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं जो अनुवाद के लिए आसान हो.
And that's a tribute to Bharti. Next time I'm going to look up some really long words for her.
और अगली बार मैं इसके लिए और लंबे शब्द ढूंढूंगा.
Good.